ஓம் சாந்தி. கர்ம யோகி ஜீவன் சங்கம் யுகமே இஸ் புருஷார்த்தி ஜீவன் மே ஹம் சபி கா லக்ஷ்ய ஹே கர்மாதீத் ஸ்திதி கீ ப்ராப்தி கர்னா. தோ கர்மாதீத் பன்னே கே லியே ஆவஷ்யக்தா ஹே கர்ம யோகி ஜீவன் அனுபவ கர்னா. கர்ம யோகி அர்த்தாத் கர்ம கே சாத் யோக ஹோ, கர்ம ஔர் யோக அலக் அலக் நா ஹோ. க்யோங்கி கர்ம கர்தே ஹுயே ஜப் பாபா கோ யாத் கர்தே ஹே தோ கர்மோ மே திவ்யதா ஆதி ஹே. ஜோ கர்ம ஹம் பாபா கி யாத் மே கர்தே ஹே வோ யாத்கார் கே ரூப் மே காயே ஜாதே ஹே. பாபா முரளி மே கேதே ஹே கி மேரே பஹாதுர் பச்சே வோ ஹே ஜோ ஏக் கே சாத் கர்ம ஔர் யோக கர்னே கி க்ஷம்தா ரக்தே ஹே வோ மேரே பஹாதுர் பச்சே கேலாதே ஹே. கை கேதே ஹே கர்ம ஹாத் சே ஜோ ஹம் கர்தே ஹே வஹி கர்ம ஹோதே ஹே. லேகின் ஜோ பி ஹமாரி கர்மேந்திரியா ஹே சாஹே வோ ஸ்தூல ஹோ சாஹே சூக்ஷ்ம ஹோ உன்கே த்வாரா ஜோ ஹம் கர்ம கர்தே ஹே உன்கோ கர்ம கேதே ஹே. ஆன்கோ சே தேக்னா, முக் சே போல்னா, கானோ சே சுன்னா, மன் சே சோச்னா, இன் சபி கோ கர்ம கேதே ஹே. அர்த்தாத் ஹம் நிரந்தர் கர்ம கர்தே ரேதே ஹே. இஸ்லியே பாபா கி யாத் பி ஹமே நிரந்தர் கர்தே ரேனா ஜருரி ஹே. தோ கர்ம கர்னே கி விதி கோன்சி ஹே இஸ்கோ பஹலே சமஜ்னா ஜருரி ஹே. இஸ்மே தோ விதியா ஹே. பஹலி விதி ஹே கர்மேந்திரியோ சே ஹம் கர்ம கர்தே ரஹே ஔர் புத்தி ரூபீ நேத்ர சே பாபா கோ சூக்ஷ்ம வத்தன் மே யா பரம் தாம் மே தேக்தே ரஹே. புத்தி ரூபீ நேத்ர சே பாபா கோ தேக்னா மானா பாபா சே கனெக்ஷன் ஜுட் ஜானா. யே பஹலி விதி ஹே. தூசரி விதி ஹே ஜப் ஹம் கர்ம கர்தே ஹே உஸ் சமய ஐசா அனுபவ கரே கி பாப் தாதா முஜே தேக் ரஹே ஹே. யஹா அனுபவ கரே யா சூக்ஷ்ம வத்தன் மே அனுபவ கரே ந கேவல் பாப் தாதா முஜே தேக் ரஹே ஹே லேகின் பாப் தாதா முஜே சகாஸ் பி தே ரஹே ஹே. தோ கர்ம பி ஹம் கர் ரஹே ஹே ஔர் பாபா கே சாத் ஹமாரா யோக பி ஜுடா ஹுவா ஹே. இஸ் யுக்தி கா மேனே பஹத் அப்யாஸ் கியா ஹே மதுபன் மே கர்ம கர்தே ஹுயே. தோ அபி கர்ம யோகி ஜீவன் அனுபவ கர்னே கே லியே குச்ச யுக்தியா மே ஆப்கே சாம்னே ரக்னா சாஹுங்கா. உஸ்மே பி விசேஷ 10 யுக்தியா ஹே. உன்னோக்கோ அகர் ஆப் அப்னே ஜீவன் மே லாதே ரஹேங்கே அப்யாஸ் கர்தே ரஹேங்கே தோ நிச்சித் ஆப்கா கர்ம யோக கா சார்ட் படதா ஜாயேகா. பஹலி யுக்தி ஹே கர்ம கர்தே சமய ஹமே ரோல் கான்சியஸ் நஹி லேகின் सोल कॉन्शियस बनना है, गुप्त ही गुप्त मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, हाथों से कर्म कर रही हूं, और वो आत्मा भी आंखों से देख रही है, मुख से बोल रही है। ऐसा गुप्त ही गुप्त आत्मा का अभ्यास करते रहें। कभी कभी हम रोल कॉन्शियस बनते हैं, मेरा रोल बड़ा है, इनका रोल छोटा है, तो इस चक्कर में हम बाबा की याद भूल जाते हैं। इसलिए हमें रोल कॉन्शियस नहीं बनना है, लेकिन कर्म करते समय सबको आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है। क्योंकि आत्मा समझकर हम सेवा करते हैं तो उसमें हमें थकावट नहीं आती है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि आगे चलकर आप इतने बिजी हो जाएंगे, इतने बिजी हो जाएंगे जो आपको 4 घंटे सोने को नहीं मिलेगा। तो उस समय 4 मिनट अशरीरी स्थिति का अभ्यास आपको ऐसा अनुभव कराएगा कि मैंने 4 घंटे आराम किया है। मुझे याद है प्रकाशमणि दादी के बारे में एक बात आपको बताना चाहूंगा। एक बार मधुबन में बड़ा ग्रुप आया था, तो बड़ा ग्रुप आने से दादी जी बहुत व्यस्त थी, उनकी पालना करने के लिए, देखरेख करने के लिए। उन दिनों में बाबा हफ्ते में 2 बार आते थे। जो भी बाबा का बच्चा मधुबन में आता था 2 बार पर्सनली मिलता था। तो जब बाबा वापस जाते थे उस समय दादी जी बाबा को विदाई देने के लिए आती थी। एक दिन दादी नहीं आई तो बाबा ने पूछा, दादी क्यों नहीं आई? तो कहा, दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है। तो जब 2 दिन के बाद बाबा आए तो मुरली के बाद दादी से मिल रहे थे। तो दादी जी को कहा कि देखो, जितनी आप व्यस्त हैं उससे भविष्य में और भी ज्यादा व्यस्त होगी, एक युक्ति को अपनाओ। अभी बॉम्बे का ग्रुप आपसे मिलके जा रहा है और दिल्ली का ग्रुप आपको मिलने के लिए आ रहा है, उसमें कुछ 1 सेकंड की गैप है। उस समय स्वयं को अशरीरी स्थिति का इंजेक्शन दो, एकदम डिटैच होकर अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। उससे आपको ऊर्जा मिलेगी और फर स्वरूप आपको थकावट नहीं आएगी। तो दादी जी ने वो युक्ति अपनाई और दादी जी अथक बनकर सेवा करती रही। कहने का मतलब है, कर्म योगी बनने के लिए बीच बीच में 1-2 घंटे के बाद हमें 1 या 2 मिनट डिटैच होकर आत्मा का अभ्यास करना है। जैसे क्रिकेटर सारा दिन क्रिकेट खेलते हैं तो उस शरीर की ऊर्जा की लेवल को मेंटेन करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक बीच बीच में पीते हैं, तो इससे हमें भी कर्म करते समय तन और मन की ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए बीच बीच में इस अभ्यास को करते रहें। दूसरी युक्ति, कर्म करते समय हमें साक्षी दृष्टा की अनुभूति करते रहना है। तो इसलिए याद रखे, जब तक साक्षी नहीं तब तक बाबा को साथी अनुभव नहीं कर सकते हैं। जितना साक्षी उतना साथी बाबा को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जैसे बाबा वतन से हम बच्चों को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से हम बच्चों को देखते हैं साक्षी होकर, बिल्कुल न्यारे प्यारे होकर ड्रामा को देखते हैं। तो ऐसे हमें भी साक्षी होकर अपने रोल को, अन्य आत्माओं के रोल को और इस बेहद ड्रामा को देखते रहना है। तो जैसे साक्षी हम बनते हैं तो बाबा की याद अर्थात साथीपन की अनुभूति हमें सहज होने लगती है। अमृत वेले से ही हमें दृढ़ संकल्प करना है कि चाहे कुछ भी हो, आज सारे दिन भर में साक्षी स्थिति को अपना कर कर्म योगी का चार्ट मुझे बहुत अच्छा मेंटेन करना है। इस लक्ष्य को लेकर अगर आप कर्म क्षेत्र पर उतरेंगे तो आपका योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। तीसरी युक्ति है, कर्म करते समय जिम्मेदारी का बोझ बाबा को दे दें, स्वयं को हल्के अनुभव करें। कर्म करते समय चाहे लौकिक जिम्मेदारी है चाहे अलौकिक जिम्मेदारी है, हमें बाबा के कंधे पर रखना है और स्वयं को एकदम हल्का फुल्का अनुभव करना है। कहते हैं हल्की अर्थात है लकी। तो जो आत्मा स्वयं को हल्की अनुभव करती है वो हमेशा उड़ती रहती है, उड़ती कला की अनुभूति करती है और बाबा की याद से कमाई करके भाग्य का सितारा चमकाती रहती है। इसलिए कर्म करने की शुरुआत जब हम करते हैं उस समय जिम्मेदारी का बोझ बाबा के कंधे पर हमें रखना है और स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करना है। लाइट अनुभव करते ही मन बुद्धि हमारी ऊपर उड़ने लगती हैं और बाबा की याद सहज अनुभव होती है। मुझे प्रकाश मणि दादी जी के साथ 30 वर्षों तक मधुबन में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं हमेशा दादी जी को देखता था, दादी जी के जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो एक बार मैं दादी जी का इंटरव्यू ले रहा था तो दादी जी से प्रश्न पूछा, दादी जी मैं देखता हूं आप इतने बड़े यज्ञ की विशाल जिम्मेदारी को संभाल रही हैं, इतने वर्षों से संभाल रही हैं, लेकिन मैंने आपके चेहरे पर कभी भी बोझ का या चिंता का या टेंशन का चिन्ह नहीं देखा। क्या इसका गुह्य राज है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो दादी जी ने कहा, देखो आत्म, पहली बात तो मैं स्वयं को निमित्त समझती हूं। निमित्त को इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूं, केवल मैं कठपुतली हूं। मैंने अपनी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में दी है, जैसे बाबा मेरे से सेवा कराते हैं मैं करती हूं। बाबा करण करावन हार है, मैं केवल करण हार हूं। ऐसी अनुभव करती हूं इसलिए मैं सदा लाइट रहती हूं। दूसरी बात, सदा एक कंधे पर शिव बाबा को और दूसरे कंधे पर फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा को अनुभव करती हूं। दुनिया के सबसे पावरफुल फोर्सेस दोनों मेरे साथ अवेलेबल रहते हैं। कोई भी बात आती है, विघ्न आती है, समस्या आती है, उनकी मदद से चुटकी से वो पार हो जाती हैं। इसलिए मैं सदा लाइट रहती हूं। तो इस युक्ति को हमें अपनाना होगा। चौथी युक्ति है, कर्म करते समय हमें सोमानधारी होकर रहना है। कर्म करते समय तीन बातों का आत्मा पर प्रभाव होने की संभावना होती है। पहली बात, जो हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। दूसरी बात, जो हमारे कर्म साथी होते हैं उनका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है। तीसरी बात, जहां जो वातावरण होता है उस वातावरण का प्रभाव भी आत्मा पर पड़ सकता है। इन तीनों बातों के प्रभाव से अगर हमें निर्लिप्त रहना है तो आत्मा पर ईश्वरीय नशे का प्रभाव रहे ये बहुत जरूरी है। जब हम समान में स्थित रहते हैं, ईश्वरीय नशे की अनुभव करते हैं, मैं खुदाई खिदमतगार हूं, मैं हीरो एक्टर हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, कोई भी समान का अभ्यास हम करते हैं तो उससे ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है। तो ईश्वरीय नशे का प्रभाव आत्मा पर पड़ने से इन तीनों बातों के प्रभाव से न्यारे रहते हैं, परिणाम स्वरूप बाबा से हमारा योग बहुत सहज रीति से जुटा हुआ रहता है। हम बहुत रॉयल आत्माएं इस सभा में बैठे हैं, होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां बैठी हैं। बाबा ने हम सभी होनहार राजा महाराजाओं को सिंहासन दिया है, सिंहासन स्वमान का। तो स्वमान के सिंहासन पर बैठकर ही हमें कर्म करते रहना है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नशा रहता था, मैं नंबर वन नारायण बनने वाला हूं। तो शुरू दिन से नारायणी नशा रहता था। उस नशे ने बाबा ने अपने संपूर्णता के निशाने पर पहुंचने का अनुभव किया। ये ईश्वरीय नशा काम करता है। इसलिए कभी भी स्वमान के सिंहासन को हमने छोड़ना नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई हमारा अपमान करता है या कैसे भी विपरीत परिस्थिति आती है, हमने स्वमान के सिंहासन को नहीं छोड़ना है। पांचवी युक्ति है, कर्म करते समय हमें टकराव से बचकर रहना है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर विभिन्न संस्कार वाले साथी हमारे साथ होते हैं, इसलिए कभी हो सकता है आपस में टकराव होने की। याद रखें, जहां टकराव वहां स्थिति का बिखराव होता है। टकराव जिससे होता है उसके प्रति हमारे मन में व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प बहुत चलते हैं और व्यर्थ संकल्पों का तूफान चढ़ता है और उसके द्वारा आत्मा की बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए इस टकराव से बचने के लिए हमें तीन सेवाधारी अपने साथ रखना है, धैर्य, शांति और स्नेह। ये तीन सेवक आपके पास होंगे तो कभी भी आपका किसी के साथ टकराव नहीं होगा और कर्म क्षेत्र पर आप निर्विघ्न होकर आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। कर्म योगी जीवन का बहुत सुंदर अनुभव करते रहेंगे। तो छठी युक्ति है, कर्म करते समय हमें अभ्यास करना है कि मैं अवतरित फरिश्ता हूं। अभी अभी कर्म करने के लिए सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया से इस साकारी दुनिया में अवतरित हुआ हूं, ये कर्म करने के लिए। और कर्म करने के बाद मैं अपने घर वापस जाऊंगा। बॉम्बे में आप रहते हो और आपका सेवा स्थान है कल्याण में, तो वो सेवा स्थान है, रहते कहां हो? बॉम्बे में रहते हो। तीन से हमारा घर है सूक्ष्म वतन और सेवा क्षेत्र है ये साकारी वतन। इसलिए हमें अनुभव करना है कि मैं अवतरित फरिश्ता कर्म करने के लिए आया हूं। विभिन्न प्रकार के कर्म आप करते रहेंगे, भोजन आपने किया ये एक कर्म हो गया, टहलने गए ये दूसरा कर्म हो गया, किसी के साथ बैठे हैं तीसरा कर्म हो गया। तो बार बार इस बात का अभ्यास करते जाना है तो बहुत डिटैच हम रहते जाएंगे, फरिश्ता अर्थात ही इस दुनिया से न्यारा, इस दुनिया के किसी के साथ उसके रिश्ते नहीं होते हैं, अर्शवासी भगवान के साथ ही सारे रिश्ते उसके होते हैं। तो फरिश्ता अर्थात तीन बातों से संपन्नता अनुभव करने वाला, ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न और ईश्वरीय गुणों से संपन्न। तो ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमें कर्म करते समय अनुभव करते जाना है और उड़ती कला में उड़ते रहना है। हम मधुबन निवासी 87 में बाप दादा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे तो बाबा ने कहा था कि मधुबन में आप क्या करते हो, बिल्कुल सिंपल सेवा आपकी है, भोजन बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, बिल्कुल साधारण आप काम करते हो। कर्म कैसा भी हो, साधारण कर्म होते हुए भी स्थिति आपकी असाधारण हो, कोई आपको खिड़की से देखें, दरवाजे से देखें, तो ऐसा अनुभव करें कि ये साधारण लोग नहीं हैं, ये महान फरिश्ते हैं, होनहार देवताएं हैं, ऐसा वो अनुभव करें। लेकिन ये सिद्धांत है, जो हमारी आंतरिक स्थिति रहती है, कोई हमें देखता है तो देखने वाले के मानस पटल पर हमारी स्थिति का रिफ्लेक्शन होता है। फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हम करते हैं आंतरिक रीति से तो देखने वाला हमें फरिश्ता स्वरूप में ही अनुभव करता है। तो स्थिति हमारी असाधारण हो, भले कर्म साधारण हो। हमने देखा है ब्रह्मा बाबा के बारे में भी साधारण कर्म बाबा करते थे मधुबन में कई बार, लेकिन लोगों को फरिश्ते का साक्षात्कार बाबा से होता था। तो ऐसा अनुभव हमारे द्वारा भी हो उसके लिए आवश्यक है, असाधारण स्थिति की अनुभूति कर्म करते हुए रखना, मेंटेन करना। सातवीं युक्ति है, कर्म करते समय श्रेष्ठ कर्मों का खाता मुझे बढ़ाना है, ये लक्ष्य हमेशा सामने रखना है। भक्ति मार्ग में कर्मों की खेती गाते हैं, जैसे कर्म करे मन मेरे वैसे ही बैल बनेंगे तेरे। जैसे वर्तमान समय हम कर्म करते हैं भविष्य में हमारे संस्कार भी वैसे ही बनते हैं, इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करने की कला अपनाना है। उसके लिए एक युक्ति को अपनाना है, लक्ष्मी नारायण के फोटो के सामने जाना है और उनके स्थूल और सूक्ष्म कर्मों की तुलना अपने कर्मों से करना है। क्या मेरे कर्म इनके जैसे महान हैं, श्रेष्ठ हैं? तो उसके लिए सारे दिन भर में कमल आसनधारी बनकर कर्म करते रहें तो स्वतः ही श्रेष्ठ कर्म होते रहेंगे और श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ कर्मों का खाता एक खजाना है और ये आत्मा के साथ रॉयल संस्कार के रूप में चलता है और उसके आधार पर ही हमें भविष्य में उज्ज्वल पद की प्राप्ति होती है। इसलिए इस लक्ष्य को अगर हम सामने रखते हैं तो योग में रहना सरल होता है, योग में रहने का उमंग उत्साह हमारा बरकरार रहता है। आठवीं युक्ति, कर्म करते समय हमेशा कर्म के फल की इच्छा नहीं रखना है। कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, यही है गीता का ज्ञान। कर्म करते समय हम सोचते हैं इस कर्म से मुझे मिलेगा क्या, ये मनुष्य की आदत है। कोई भी कर्म शुरुआत करते हैं तो सोचते हैं इससे मुझे क्या मिलेगा। तो कर्म करते समय हमें फल की इच्छा नहीं रखना है। अगर फल की इच्छा रखेंगे तो वही फल हमारे दिमाग में घूमता जाएगा, इस कर्म से मेरा मान शान होगा, इस कर्म से मुझे सतयुग में श्रेष्ठ पद होगा। तो ये फ्रूट कॉन्शियस फल बुद्धि में घूमता रहेगा कर्म का, तो बाबा की याद एक तरफ रहेगी। बाबा ने कहा है जब आप अमृत वेले ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं और जब कर्म क्षेत्र पर उतरते हैं तो कर्म योग को किनारे रख देते हैं। ऐसा हमें नहीं होने देना है, क्योंकि हम भगवान के यज्ञ की सेवा करते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें निश्चित मिलना है। जो भी हम सेवा करते हैं वो भगवान के रजिस्टर में नोंद होती है, उसका फल हमें मिलना ही मिलना है। कई बार हम मन में इच्छा रखते हैं कि मैं सेवा करता हूं तो बड़ों ने मेरी महिमा करनी चाहिए, टीचर ने मेरी महिमा करनी चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई देखे ना देखे मेरी सेवा को भगवान मुझे देख रहा है। मुझे उनसे फल लेना है और वो फल मुझे निश्चित मिलना है। इसलिए फल की इच्छा न रखते हुए हमें कर्म करते जाना है तो योग के तरफ ध्यान स्वतः ही रहेगा। इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। अभी नवी बात है, कर्म करते समय जितना बिजी उतना इजी हमें रहना है। इस कंप्यूटर एज में छोटे से लेकर बड़ों के दिमाग में एक ही बात फिट है कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं बहुत बिजी हूं, ये पत्थर जब हम मन बुद्धि पर रखते हैं तो मन बुद्धि बोझिल होती हैं और कर्म योग हमें मुश्किल लगता है, बाबा की याद हमें मुश्किल लगता है। तो हमें जितना बिजी रहते हैं उतना इजी रहना है। इजी माना सरल, हमारा नेचर कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इजी हो, सरलता हमारे नेचर में हो। अगर सरलता नहीं होगी तो छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब होते जाएंगे और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। इसलिए इजी रहना बहुत जरूरी है तो कर्म योगी हम सहज बन सकते हैं। मुझे याद है 86 में ओम शांति भवन में विदेशी बाबा से मिल रहे थे। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने कहा किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक बाबा का बच्चा सभा में खड़ा होकर प्रश्न पूछने लगा, बाबा हमें लौकिक जॉब करना पड़ता है, बाबा की सेंटर की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है, दिन भर घोड़े की तरह भागना पड़ता है और जैसे हम अमृत वेले बैठते हैं योगाभ्यास के लिए, तो माया को नमस्कार करते रहते हैं, सैल्यूट मारते रहते हैं, जुट के खाते रहते हैं, नमस्ते माया, क्या करे बाबा? तो बाबा मुस्कुराए, अच्छा। तो बाबा ने कहा, इस साकारी दुनिया में सबसे बिजिएस्ट व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा बाबा। बाबा से बढ़कर कोई भी बिजी नहीं है। सबसे बिजिएस्ट व्यक्ति होते हुए सबसे इजी रहकर नंबर वन कर्म योगी का सैंपल बन के दिखाया। तालियां तो बजाओ भाई। हमारे सामने रोल मॉडल हैं, कोई हवा की बातें हम नहीं कर रहे हैं। जो बाबा ने इतनी उच्च कोटि की ज्ञान की बात हमें बताई है, ब्रह्मा बाबा ने उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर दिखाया है, प्रमाण है प्रत्यक्ष हमारे सामने। केवल हमने बाबा के कदमों पर कदम चलना है। तो ये बात जब बाबा ने कही कि ब्रह्मा बाबा नंबर वन कर्म योगी सैंपल बने हैं, वो आपका बाप है, किसी और का नहीं। अगर आपका बाप ऐसा नंबर वन कर्म योगी सैंपल बन सकता है, तो आप नहीं बन सकते हैं। तो बात को सुनकर उसने लंबी सांस ली, हाँ हो तो सकता है। तो कहने का भाव है, केवल हमें दृढ़ता संकल्पों में रखना है। बाबा कहते हैं, दृढ़ता की परछाई है सफलता। जितनी दृढ़ता उतनी सफलता उस कार्य में हमें मिलती है। तो मुझे कर्म योगी जीवन अनुभव करना है, ऐसा लक्ष्य रखेंगे तो आप सभी स्पार्कलर यहां बैठे हैं, सारे स्पिरिचुअल रिसर्च स्कॉलर यहां बैठे हैं। बाबा ने कहा है, योगी के साथ प्रयोगी भी आपने बनना है, और आप प्रयोगी बनेंगे तो ब्राह्मण संसार के सामने आप भी एक उदाहरण रूप में होंगे। इसलिए हमें क्या करना है, बिजी रहना है और इजी भी रहना है। दसवीं युक्ति, कर्म करते समय हमें बुद्धि में रखना है, मुझे दिव्य गुणों का दान करते रहना है। जैसे लौकिक दुनिया में लोग सज धज कर मेकअप करके कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, ऐसे हमें भी दिव्य गुणों से जो बाबा ने आभूषण दिए हैं, ज्वेलरी दिए हैं, उस दिव्य गुणों के आभूषणों से स्वयं को सजाना है और कर्म क्षेत्र में उतरना है। तो जो भी हमारे चेहरे को देखें, चलन को देखें, तो दिव्य गुणों का दान होता रहे। मैं 1976 में पहली बार मधुबन में सेवाधारी बनकर आया था, तो हम 60 सेवाधारी बाप दादा से मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे। तो बाबा ने बहुत अच्छी एक बात बताई थी कि देखो, समय कम है, इसलिए एक ही साथ ट्रिपल सेवा आपको करना है मधुबन में। अब ट्रिपल सेवा कौन सी करेंगे भाई? एक तो कर्मणा सेवा, दूसरी मनसा सेवा, और तीसरी वाचा। किसको ज्ञान देंगे? यहां सबसे ज्ञानी बैठे हैं, एक से एक बढ़कर। तो बाबा ने कहा, दिव्य गुणों से श्रृंगारित किए हुए चेहरे से दिव्य गुणों का दान करने की सेवा आपको करना है। ज्ञानियों को हम ज्ञान नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी अगर सेवा हम करना चाहते हैं तो दिव्य गुणों का दान आप कर सकते हैं। आपका चेहरा हमेशा हर्षित रहता है, आपका चेहरा कभी गंभीर रहता है, धीरज आप में है, रमणीकता, जो भी दिव्य गुण हैं, वो आपके जीवन से लोग सीखे और अनुभव करें। तो ये दिव्य गुणों का दान करने से हमें अनेक आत्माओं की दुआएं मिलती जाएगी और दुआएं मिलने से योगाभ्यास हमें सरल अनुभव होता जाता है। इसलिए कभी भी हमारा चेहरा खाली न हो, चेहरा हरा भरा हो। हम हीरो एक्टर हैं, तालियां बजाओ ना जरा अच्छी तरह से। हम हीरो एक्टर हैं सारे संसार में, सुपरस्टार हैं, बाबा सुप्रीम स्टार है, और हम सभी सुपरस्टार है, केवल स्टार नहीं सुपरस्टार हैं। तो जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं बाहर, कोई हमारे चेहरे को देखता है, खाली हाथ मेरे दर से कोई नहीं जा सकता है। ये मेरा घर है, ये मेरा दर है, मेरे दर से कोई भी खाली हाथ नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं दाता का बच्चा हूं। कई बार हम ट्रेवलिंग करते हैं और कोई अड़ोसी पड़ोसी हमारे पहचान का नहीं होता है तो हम गुब्बारे की तरह ऐसे बैठते हैं। अरे भाई कुछ नहीं दो, स्माइल तो दो, इतने तो कंजूस नहीं बनो, दाता के बच्चे हैं, कुछ नहीं दो, स्माइल तो दो। क्योंकि सारे संसार की आत्माएं हमारे से कनेक्टेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि हम कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं, सारे कल्प वृक्ष के आत्माओं रूपी पत्तों का हमारे साथ कनेक्शन है। इसलिए एक व्यक्ति कोई हमारे से एक बार मिलता है, पता नहीं वह दूसरी बार मिलेगा या नहीं। इसलिए मुझे स्माइल देना है, खुशी के भाव, शांति के भाव, प्रेम के भाव, आनंद के भाव, गुणों का दान मुझे करते जाना है, जाने अनजाने कोई भी मेरे चेहरे को देखे, क्योंकि हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस युक्ति को भी आप अपना सकते हैं, कर्म क्षेत्र पर मुझे गुणों का दान करते जाना है, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ स्थिति अनुभव करते जाना है। तो ऐसे ये विभिन्न युक्तियों को अपनाकर हमें कर्म योगी जीवन को अनुभव करते जाना है। और जैसे जैसे कर्म योगी हम बनते जाएंगे, कर्मातीत स्थिति के समीप हम पहुंचते जाएंगे और संपूर्णता के समीप पहुंचते जाएंगे। समय तेजी से भाग रहा है आगे, इसलिए समय की रफ्तार के साथ हमें अपनी स्थिति की रफ्तार को भी मेंटेन करते जाना है। इसलिए कर्म योगी जीवन अनुभव करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे सामने है। अभी 15 मिनट ऐसी पावरफुल योग की हम अनुभव करने जा रहे हैं जो कभी आप भूल नहीं सकेंगे। ठीक है भाई, करना चाहते हैं? सभी स्पार्कलर बोलो, करना चाहते हैं ना? तो थोड़ी सी तालियां बजाओ जरा एक अच्छे तौर से। सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, सीधा बैठे, बूढ़े की तरह नहीं बैठना, ऐसे सीधा युवा की तरह बैठो। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति, जग मग रही हूँ, मस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्म ज्योति के चारों सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो अपने सत्य स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं आत्म ज्योति इस देह रूपी चैतन्य मोमबत्ती से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस आकारी क्रम क्षेत्र की दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं जहां चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे
अति मीठे। शिव बाबल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूं। असीम आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख के परम आनंद की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा पुनः दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओ, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों सुनहरी लाल ही लाल सुनहरी लाल लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। मेरी प्राणों के प्राण मेरी प्राण आधार सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबल। मज आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति बाबा की सुंदर छवि को दिव्य चक्षु से निहार रही हूं। सुंदरता के सागर शिव पिता की सुंदरता को एंजॉय कर रही हूं। भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर मेरे दिलाराम मेरे सलोने शिव साजन विराजमान है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन को देख रही हूं। मेरे शिव साजन मुझ सजनी को दिव्य गुणों के श्रृंगार से श्रृंगार रहे हैं। मुझ आत्मा रूपी सजनी के दिल में शिव साजन के प्यार का असीम झरना बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के समीप जा रही हूँ, अति समीप पहुंच चुकी हूँ और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूँ। मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ हूँ, साजन के प्यार में पागल हो चुकी हूँ, प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूँ, समा चुकी हूँ, लीन हो चुकी हूँ, कंबाइंड हो चुकी हूँ, खुदा पर फिदा हो चुकी हूँ। मेरे सलोने शिव साजन आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव साजन से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्म सजनी पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर शिव साजन से अनंत शक्तियां प्रचंड शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। बलिहारी मेरे शिव साजन की जो मुझ शिव सजनी को एकदम लाइट बना दिया। मैं आत्मा सजनी एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मेरे जीवन के सबसे कुछ में पल है यह, सुनहरे पल है यह, जो इतने विशाल परम धाम रूपी पीस पैलेस में मैं आत्म सजनी अपने सलोने शिव साजन से मधुर मिलन का आनंद ले रही हूँ। वारे में वाह मेरे शिव साजन, वाह मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्म सजनी परम धाम रूपि निराकारी दुनिया से बुद्धि रूपी विमान में बैठकर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूँ और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर विराजमान हो चुके हूँ। मस चैतन्य आत्म ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैलता ही जा रहा है। ज्ञान सूर्य से, शक्तियों की किरणों का फाउंटेन, मुज आत्म ज्योति पर डायरेक्ट परम धाम से पड़ रहा है। मैं आत्म ज्योति, शक्तियों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूँ, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरे भ्रुकुटी में मस्तक मणि चमक रहा है, मुझ मस्तक मणि आत्म ज्योति से दी अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति।